بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت ایوم اس کے انواع سے کریں گے۔ آج آپ پوتر قرآن مجید کے سورہ حجرات کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی تلاوت اور انواع سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان لانے والو، بہت سی سوچوں سے بچو کہ کچھ سوچیں پاپ ہوتی ہیں، اور ٹوہ میں مت رہو، اور نہ تم میں سے کوئی پیٹھ پیچھے کسی کی نندا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا ماس کھائے؟ تمہیں سوئم اس بات سے گھن آئے گی، اور ایشور سے ڈرتے رہو، نسندیہ ایشور توبہ سویکار کرنے والا اور دیاوان ہے۔ ہے لوگو، ہم نے تمہیں ایک پرش و استری سے پیدا کیا، اور تمہاری بہت سی جاتیاں اور ونش بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ निसंदेह ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारे बीच सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो है जो ईश्वर से सबसे अधिक भय रखता है। निसंदेह ईश्वर अत्यंत ज्ञानी और जानकार है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। दोस्तों, आज मंगलवार है, तीर माह की 20, जिलहिज्जा की 22 और जुलाई की 11 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप सुनेंगे कार्यक्रम पुरानी किस्से और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा यूरोप में इस्लामोफोबिया। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान ने तस्करी करने वाले एक और तेल टैंकर को पकड़ लिया, अमेरिका क्रोधित। अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि ईरान परमाणु हथियारों के प्रयास नहीं कर रहा है। इसराइली सैनिक फिलिस्तीन मीडिया कर्मियों को लगातार निशाना बना रहे हैं। अंतरिक्ष दुनिया में भारत इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है। और अब आप मरियम मेरदादी और अख्तर रिज़वी से विस्तार से समाचार सुनिए।
बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के प्रवक्ता ने अमरीकी नौसैनिकों की गैर कानूनी कार्रवाइयों की ओर इशारा किए बगैर स्वीकार किया है कि ईरान की सिपाही पासदारान फोर्स ने तस्करी करने वाले एक तेल टैंकर को रोक लिया है, जबकि ईरानी नौसेना के एक वरिष्ठ कमांडर ने पकड़े गए तेल टैंकर का ब्यौरा देते हुए कहा कि इस विदेशी तेल टैंकर को सिपाही पासदारान के जवानों ने पकड़ा है और तस्करी के तेल को फारस की खाड़ी से लेकर स्वतंत्र जल क्षेत्रों की ओर ले जा रहा था कि सिपाही पासदारान ने उसे पकड़ लिया। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार एडमिरल रमजान जीर राही ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एक विदेशी तेल टैंकर 10 लाख लीटर से अधिक तेल गैर कानूनी रूप से ले जा रहा था और अमरीकी सैनिकों को उसे समर्थन प्राप्त था, परंतु सिपाही पासदारान के जवानों ने इस तेल टैंकर को पकड़ लिया और उस पर काम करने वाले सेवा दल के कर्मियों को भी गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि तस्करी करके तेल ले जाने वाले टैंकर को बचाने के लिए 2 अमरीकी युद्धक विमान भी आए और आखिरी समय तक उन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ।
इस्लामिक गणतंत्र ईरान की थल सेना के कमांडर ने कहा है कि अमरीका अब सुपर पावर नहीं रहा और उसका दुनिया पर झूठा वर्चस्व इस समय समाप्त हो चुका है। इस्लामिक गणतंत्र ईरान की थल सेना के कमांडर ब्रिगेडियर جنرل کیومرس حیدری نے 1979 میں آرمی ایویشن کے جوانوں کی امام خمینی کے ساتھ شپت کی یاد میں آیوجت کاریکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ آرمی ایویشن کے کرمیوں نے 10 جولائی 1979 کو امام خمینی کے سامنے شاندار پریڈ دوارا اسلامی کرانتی کے سنستھاپک سے بیعت کی اور وایو سینا کے جوانوں نے امام خمینی کے ساتھ جو بیعت کی وہ اٹوٹ ہے اور آج تک جاری ہے۔ ایران کی تھل سینا کے کمانڈر نے کہا کہ آج امریکہ سپر پاور نہیں رہا اور امریکہ کے جعلی ورچسو کی کوئی خبر نہیں ہے اور اسلامی گنتنتر ایران چھیتری اور انتراشٹریہ حالات میں بہترین ڈھنگ سے اپنی بھومیکا ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی گنتنتر ایران کی سینا نے عراق دوارا ایران پر تھوپے گئے یدھ کے دوران پوتر پرتیرکشا کال کے 48,000 شہید پیش کیے اور سپاہیوں نے امام خمینی سے جو بیعت کی وہ ابھی تک جاری ہے۔
پشچمی اور زائنی ادھیکاریوں کے دعووں کے باوجود امریکہ کی گپتچر ایجنسی نے سویکار کیا ہے کہ ایران پرمانو ہتھیار پراپت کرنے کے پریاس میں نہیں ہے۔ سماچار ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے انوسار امریکی انٹیلیجنس کی اور سے ایک سمیکشا کی گئی جس کے بعد یہ کہا گیا کہ ایران پرمانو ہتھیاروں کے پریاس میں نہیں ہے۔ امریکہ کی خفیہ سیوا کی سویکاروکتی کے باوجود پشچمی اور زائنی ادھیکاریوں کے پریاس وفل ہو چکے ہیں کہ ایرانوفوبیا کی نیتی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے سی آئی اے کے پرمکھ نے بھی سویکار کیا تھا کہ ایران پرمانو ہتھیار پراپت نہیں کرنا چاہتا۔
امریکہ کے راشٹریہ سرکشا سلاحکار جیک سلیون نے کہا ہے کہ امریکی قیدیوں کی آزادی کے سمبندھ میں ایران سے پروکش وارتا ہو رہی ہے۔ سماچار ایجنسی فارس کی رپورٹ کے انوسار جیک سلیون نے ایک ساکشاتکار میں کہا کہ بائیڈن سرکار ایران میں امریکی بندیوں کی رہائی کے لیے تہران سے پروکش وارتا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرمانو وشے کے بارے میں یا بندیوں کی رہائی کے سمن میں ایران سے کوئی سیدھی وارتا نہیں ہو رہی ہے، پرنتو بندیوں کی رہائی کے سمن میں ایران سے پروکش وارتا ہو رہی ہے۔
ایران کے پیرا ایتھلیٹ نے بھالا پھینکنے کا وشو ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ ٹریک اور فیلڈ کے دسیوں پیرا ایتھلیٹس انتراشٹری مقابلے رویوار کو پیرس میں شروع ہوئے جو 17 جولائی تک جاری رہیں گے۔ ان مقابلوں میں 103 دیشوں کے 1206 ایتھلیٹس نے بھاگ لیا، جن میں سے ہر وبھاگ کی پہلی 4 پوزیشن حاصل کرنے والوں کو پیرس پیرا اولمپک میں بھاگ لینے کا ٹکٹ مل جائے گا۔ ایران کے جیولن تھرو میں 2 گروپ نے بھاگ لیا، جن میں ایک گروپ نے یدھ کے دوران اپنگ ہو جانے والے ایتھلیٹ شامل تھے، جبکہ دوسرے گروپ میں پراکرتک روپ سے اپنگ اور اندھے کھلاڑی شامل تھے۔
سیریا میں ہونے والے کار بم کے دھماکے میں بچوں سہیت 5 لوگوں کی موت ہو گئی۔ ہمارے سنواددتا کی رپورٹ کے انوسار یہ کار بم دھماکہ سیریا کے پورووتر کے گرامین کھیتر شیوا میں ہوا، جس میں 5 سہیت 5 لوگوں کی موت ہو گئی۔ سیریا کے سرکار ورودھ مانو ادھیکار کیندر نے، جس کا مکھیالے بریٹر میں، کہا ہے کہ یہ دھماکہ شیوا کے گرامین کھیتر میں کار میکینیکل گیرج میں ہوا ہے۔ ابھی تک اس دھماکے کے حوالے سے ادھک بیورا سامنے نہیں آ سکا۔
یہ سماچار ریڈیو تہران سے پرسارت کیے جا رہے ہیں۔ فلسطین کے ایک میڈیا سینٹر نے اویدھ زائنی شاسن کی اور سے فلسطینی پترکاروں اور میڈیا ادھیکاریوں پر جان بوجھ کر حملے اور انہیں نشانہ بنائے جانے کے کرم میں جانچ کے لیے ایک وشیش کمیٹی بنانے کی مانگ کی ہے۔ القدس العربی کی رپورٹ کے انوسار 1948 کے فلسطینی کھیتروں میں استھت ناصرہ شہر کے میڈیا سینٹر نے زائنی شاسن کی آنترک سرکشا کے منتری اور اس کی سینا کے ٹونی جلن کے نام ایک پتر بھیجا ہے، جس میں یہ بل دے کر کہا گیا ہے کہ زائنی سینا جان بوجھ کر پترکاروں اور میڈیا کرمیوں کو نشانہ بناتی ہے اور ان کی گتیویدھیوں میں بادھائیں پیدا کرتی ہے۔
فلسطینیوں کے گھروں کو گرانے کی 256 کاروائیوں میں 272 بچوں سہیت 543 فلسطینی بے گھر ہونے کے کھلے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اویدھ اتکرمن کاری زائنی شاسن نے فلسطینی گھروں اور عمارتوں کو دست کرنے کے ادے سے 256 کاروائیاں انجام دی، جن میں ویسٹ بینک میں اودیوگک پرتشٹھان اور بیت المقدس میں اسکول کی عمارت سہیت 300 عمارتوں کو دست کر دیا گیا۔
انترکش دنیا میں بھارت ایک نیا اتہاس رچنے جا رہا ہے۔ بھارتی سپتاہ اسرو چندریان 3 کو لانچ کرنے کے لیے پوری تیاری سے تیار ہے۔ اس کے بعد لانچنگ کے ساتھ ہی بھارت چندرما کی سطح پر اپنا انترکش یان اتارنے والا دنیا کا 4th دیش بن جائے گا۔ بھارت کے کیندریہ راجیہ منتری جیتیندر سنگھ نے کہا کہ پردھان منتری نریندر مودی کی حالیہ امریکی یاترا میں انترکش سمبندھی مہتوپورن سمجھوتے ہوئے، جس سے پتا چلتا ہے کہ جن دیشوں نے بھارت سے بہت پہلے اپنی انترکش یاترا شروع کی تھی، وہ آج بھارت کو ایک سمان سہیوگی کے روپ میں دیکھ رہے ہیں۔
पिछले कुछ दिनों में पूरे उत्तर भारत में लगातार बारिश के कारण मरने वालों की संख्या 41 हो गई है। भूस्खलन, बाढ़, जलभराव और संबंधित आपदाओं ने क्षेत्र के राज्यों, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहर बरपा कर रखा है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में पिछले दो दिनों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि पंजाब और हरियाणा में 9, राजस्थान में 7 और उत्तर प्रदेश में बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में 3 लोगों की मौत की सूचना है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पिछले 48 घंटों में 20 लोगों की जान ले ली है।
कांग्रेस ने 9 जुलाई को उन खबरों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की जिनमें कहा गया है कि संविदा आधारित अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए युवा प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर कहा कि इस योजना ने युवाओं के सपने को चकनाचूर कर दिया और उनके मन में कई तरह की आशंकाएं पैदा कर दी हैं।
3 नौकाओं में बैठकर स्पेन की ओर जा रहे 300 लोगों के लापता होने की खबर है। प्राप्त समाचारों के अनुसार सेनेगल से 3 नौकाओं में सवार होकर स्पेन जा रहे कम से कम 300 लोग लापता है। स्पेन के एक सहायता समूह ने सोमवार को ये जानकारी दी है।
उत्तरी कोरिया ने कहा है कि अपने देश की वायुसीमा में अमरीका के जासूसी विमान को मार गिराएंगे।
मेक्सिको में नकाबपोश बंदूकधारियों ने दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया है। नकाबपोशों ने पहले मेक्सिको की बाजार में जबरदस्त गोलीबारी की, इसके बाद फिर दुकानों में आग लगाकर 9 लोगों को जिंदा जला डाला। और इसी के साथ रेडियो तेरान से समाचार समाप्त हुए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के उस कबूलनामे के बारे में कि जिसमें उसने बात मानी है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने का प्रयास नहीं कर रहा है।
अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक बैठक के बाद
और फिर बात करेंगे अर्दोगान की कि जिन्होंने पवित्र कुरान का अपमान करने वाले देश को दिया सहारा।
नेटो में स्वीडन की सदस्यता पर मचने वाले राजनीति
और अंत में चलेंगे भारत, जहां पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। शुरुआती नतीजों में TMC ने बढ़त बनाई हुई है।
भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में
तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की। अमरीकी इंटेलिजेंस की एक बैठक के बाद ये कहा गया है कि ईरान परमाणु हथियारों को प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद मेहंदी।
अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक बैठक के बाद ये कहा गया है कि ईरान परमाणु हथियारों को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। साथ ही इस बैठक के बाद ये कहा गया है कि ईरान अब भी शोध व विकास कार्यों के लिए परमाणु गतिविधियां अंजाम दे रहा है। इससे पहले यानी दिसंबर 2022 में अमेरिका के राष्ट्रीय इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया था कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो इस बात का सूचक हो कि ईरान परमाणु हथियारों के लिए प्रयास कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका के जानकार हलकों को अब पता चला है कि ईरान परमाणु हथियारों को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहा है। इसके जवाब में जानकार हलकों का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और न केवल अमेरिका बल्कि दूसरे देशों के अधिकारियों व राजनेताओं को बहुत पहले से ज्ञात है कि ईरान परमाणु हथियारों को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहा है और केवल केवल ईरान पर दबाव डालने का ये मात्र हथकंडा है। रोचक बात यह है कि ईरान और ईरानी अधिकारियों ने बारंबार बल देकर कहा है कि उनकी प्रतिरक्षा नीति में न केवल परमाणु हथियारों बल्कि सामरिक विनाश के किसी भी हथियार का स्थान नहीं है। यही नहीं, ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई का इन हथियारों के इस्तेमाल हराम होने के संबंध में फतवा भी मौजूद है। इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता कहते हैं कि मैं बल देकर कहता हूं कि इस्लामी गणतंत्र ईरान कभी भी परमाणु हथियारों के प्रयास में नहीं रहा है और साथ ही परमाणु हथियारों से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लाभ उठाने हेतु ईरानी राष्ट्र के अधिकार से पीछे भी नहीं हटेगा। हमारा नारा है परमाणु ऊर्जा सबके लिए और परमाणु हथियार किसी के लिए भी नहीं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण लक्ष्यों के लिए है और ये वो बात है जिसे परमाणु ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IAEA ने अपनी बारंबार की रिपोर्टों में स्वीकार किया है। यही नहीं, ईरान की परमाणु गतिविधियों पर पैनी नजर रखने और उसकी निगरानी के लिए एजेंसी की ओर से क्लोज सर्किट कैमरे भी लगाए गए हैं। परमाणु ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने अभी पिछले नवंबर महीने में कहा था कि हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो इस बात का सूचक हो कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सैन्य लक्ष्यों के लिए है। यद्यपि ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण लक्ष्यों के लिए है, परंतु अमेरिका और उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले तेहरान पर दबाव डालने के लिए उसके परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ आधारहीन दावे करते रहते हैं। रोचक बात यह है कि ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों के खिलाफ ये देश और गैर कानूनी शासन दावे करते हैं जिनके पास परमाणु हथियारों के भंडार हैं। यही नहीं, अमेरिका वर्ष 1945 में जापान के दो नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी कर चुका है जिसमें 2,00,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और इस जघन्य अपराध के लिए उसने आज तक जापान के लोगों से माफी तक नहीं मांगी है और स्वयं को एक जिम्मेदार देश भी बताता और कहता फिरता है। यही नहीं, जानी शासन के अधिकारी भी कुछ कुछ समय पर ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रमों के खिलाफ आधारहीन दावे करते रहते हैं। अगर अमेरिका और इसराइल के पास छोटा सा भी प्रमाण होता तो वे अब तक इससे अवश्य पेश कर चुके होते। ज्ञात है कि पश्चिम एशिया में मात्र इसराइल है जिसके पास 200 से अधिक परमाणु वॉरहेड्स मौजूद हैं, जो क्षेत्र की शांति व सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। और ज़ानी अधिकारी ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रमों के खिलाफ दावा करके तेहरान पर दबाव डालना और वास्तविकता से आम जनमत का ध्यान हटाना चाहते हैं।
और अब चर्चा करते हैं स्वीडन के नाटो में जाने के साफ हुए रास्ते के बारे में। एक ओर पूरी दुनिया का मुसलमान स्वीडन में पवित्र कुरान के हुए अनादर से नाराज है तो दूसरी ओर रूस स्वीडन के नाटो का सदस्य बनने का विरोधी। लेकिन इन सब के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने स्वीडन की नाटो की सदस्यता का विरोध न करने का फैसला करके दुनिया भर के मुसलमानों और दोस्त देश रूस को नाराज कर दिया है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हमारे साथी सैयद मीसम।
नेटो में स्वीडन की सदस्यता पर मचने वाले राजनीतिक बवाल के बाद आखिरकार तुर्क राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने नेटो में स्वीडन की सदस्यता पर सहमति जता दी है। लिथुआनिया में नेटो शिखर सम्मेलन की शुरुआत से कुछ घंटे पहले नेटो के प्रमुख येंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान इस सैन्य गठबंधन में स्वीडन को शामिल करने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अर्दोगान स्वीडन की सदस्यता से संबंधित प्रोटोकॉल को जल्द से जल्द संसद में पेश करने का प्रयास करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध जारी रहने और पूर्वी यूरोप में संघर्ष में वृद्धि के कारण स्वीडन ने कि जिसने इससे पहले तक यूरोप में तटस्थ रुख अपना रखा था फिनलैंड के साथ नेटो में शामिल होने का अनुरोध किया था। इस अनुरोध का पश्चिमी देशों ने आगे बढ़कर स्वागत किया लेकिन तुर्की ने इस अनुरोध के संबंध में एक अलग रुख अपनाया। अंकारा के अधिकारियों ने स्वीडिश सरकार पर आतंकवादी समूहों का समर्थन करने का आरोप लगाया और अर्दोगान ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि तुर्की नेटो में स्वीडन की सदस्यता के लिए तब तक सहमत नहीं होगा जब तक वो उसकी शर्तों को पूरा नहीं करेगा। अर्दोगान सरकार के इस रुख के बाद तुर्की पर पश्चिमी देशों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया और पश्चिमी नेताओं ने तुर्की को स्वीडन की सदस्यता स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश की। तुर्की ने स्वीडन पर कुर्द आतंकवादियों को पनाह देने और उनका समर्थन करने का आरोप लगाते हुए उसके आवेदन को कई महीने तक लटकाए रखा। नेटो के 31 सदस्यों में से एक होने के नाते तुर्की के पास किसी भी नए देश को इस गठबंधन में शामिल होने से रोकने के लिए वीटो पावर है। दरअसल रूस को रोकने के लिए वाशिंगटन के साथ गठबंधन करने वाले यूरोपीय देश लंबे समय से स्वीडन को नेटो में शामिल करना चाहते थे ताकि नेटो की उत्तरी शाखा बनाकर रूस के खिलाफ घेरेबंदी का चक्र पूरा किया जा सके। माना जा रहा है कि अंकारा के रुख में बदलाव के बाद अगर स्वीडन नेटो का सदस्य बनता है तो तुर्की और रूस के बीच तनाव बढ़ जाएगा। हालिया महीनों के दौरान मॉस्को ने पूर्वी यूरोप में नेटो के विस्तारवाद के बारे में बार बार चेतावनी दी है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने हाल ही में कहा था, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हिटलर ने सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध के नाम पर कई यूरोपीय देशों को लामबंद किया। आज नेटो और यूरोपीय संघ इसी तरह काम कर रहे हैं और रूस से लड़ने के लिए एक नया गठबंधन बना रहे हैं। नेटो में स्वीडन की सदस्यता पर तुर्की की सहमति पर प्रतिक्रिया देते हुए अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि वो राष्ट्रपति अर्दोगान की प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं। यहाँ सवाल यह है कि अर्दोगान पुतिन को नाराज करके बाइडन से क्या चाहते हैं।
और अब रुक करते हैं भारत का। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती के बाद शुरुआती रुझानों में टीएमसी को बंपर जीत मिल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से कम सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को अब तक बड़ी सफलता मिली है। तृणमूल कांग्रेस ने 73,229 ग्राम पंचायतों में से 3,700 से अधिक पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि 3,167 पंचायतों में उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। राज्य के निर्वाचन आयोग ने ये जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा ने 673 सीटों पर जीत दर्ज की है और 782 पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 241 सीटों पर जीत दर्ज की है और 627 से अधिक ग्राम पंचायत सीटों पर आगे है, जबकि सहयोगी कांग्रेस ने 107 ग्राम पंचायत सीट पर जीत दर्ज की है और 241 पर आगे चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि करीब 74,000 सीटों पर हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटों की गिनती कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। इनमें ग्राम पंचायत सीट के अलावा 9,730 पंचायत समिति की सीट और 928 जिला परिषद की सीटें भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के 22 जिलों में करीब 329 मतगणना केंद्र बनाए गए थे और सुरक्षा के व्यापक उपाय किए गए थे। पश्चिम बंगाल में शनिवार को हुए पंचायत चुनाव में व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। मतदान के दौरान मत पेटियां लूटी गईं, मत पत्रों को दहन किया गया और कई स्थानों पर प्रतिद्वंदियों पर बम फेंके गए थे। शनिवार को हुए चुनाव में 80.71% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। सोमवार को 696 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हुआ था। हिंसा और मत पेटियों से छेड़छाड़ की खबरों के बाद इन मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराने का फैसला किया गया था। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा का इतिहास रहा है। इस राज्य में 2003 में हुए पंचायत चुनाव के दौरान 76 लोगों की मौत हो गई थी। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का यह दैनिक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है कार्यक्रम कुरानी किस्से।
कुरानी किस्से। दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर है स्वाति और रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि पवित्र कुरान के सूरह फुस्सिलत की 26 से लेकर 28 तक की आयतें कब नाजिल हुई हैं। एक रात कुरैश के तीन बड़े काफिर खाने काबा की दीवार के पीछे आकर छिप गए और उन तीनों ने एक दूसरे को ये नहीं बताया था कि आज रात को वे क्या करने वाले हैं। उन तीनों का मकसद पवित्र कुरान की तिलावत सुनना था। उनमें से हर एक ने अपने लिए एक जगह का चयन किया और वहीं सुबह तक बैठे रहे और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम द्वारा पवित्र कुरान की तिलावत सुनी। जब सुबह का उजाला हो गया तो वे अपनी अपनी जगह से उठे और रास्ता चल दिए। रास्ते में तीनों की एक दूसरे से मुलाकात हो गई। जब उन्हें एक दूसरे के राज का पता चला तो वे एक दूसरे की भर्त्सना करने लगे। उसी समय एक ने दूसरे से कहा, दोबारा ये काम न करना, अगर सामान्य आदमी तुम्हें इस हालत में देखेगा तो वो क्या सोचेगा, तुम्हारा ये काम खुद एक प्रकार से मोहम्मद के धर्म का प्रचार है।
कुरैश के तीनों काफिरों ने एक दूसरे से वचन लिया कि अब वे दोबारा ये काम नहीं करेंगे, मगर वादे के खिलाफ वे तीनों अगली रात को खाने काबा की दीवार के पीछे पहुंचे और रात में पैगम्बर इस्लाम के मुंह से पवित्र कुरान की मनमोहक तिलावत सुनी। जब सुबह हुई तो तीनों अपने अपने स्थान से उठे और चल दिए, परंतु इस बार भी रास्ते में तीनों की एक दूसरे से मुलाकात हो गई। जब तीनों को पता चला कि वे कहां थे और क्या कर रहे थे तो दोबारा एक दूसरे की भर्त्सना किए और एक दूसरे से अलग हो गए और तीनों इस बात के प्रति वचनबद्ध हुए कि दोबारा ये कार्य नहीं करेंगे। परंतु जब तीसरी रात आई तो तीनों काफिरों ने दोबारा वही काम किया जो पहली और दूसरी रात को किया था, और जब सुबह हो गई तो तीनों ने अपना अपना रास्ता लिया, मगर संयोग से रास्ते में एक स्थान पर तीनों की भेंट एक दूसरे से हो गई। इस बार उनमें से एक ने कहा, इस बार हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, मगर यह कि हम तीनों एक दूसरे को पक्का वचन दें कि अब दोबारा ये काम नहीं करेंगे। बहरहाल तीनों ने एक दूसरे को वचन दिया और एक दूसरे से अलग हो गए।
दोस्तों, ये बात आपको ज्ञात है कि ताज़ा मुसलमान होने वालों को मक्का के काफिर और अनकेश्वरवादी बहुत यातना देते और पड़ताड़ित करते थे और उनकी पड़ताड़ना की वजह से इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले कई ताज़ा मुसलमानों की मौत भी हो गई। काफिर मुसलमानों को इतना अधिक प्रताड़ित करते थे कि वो इस्लाम धर्म छोड़ दे या मर जाए ताकि दूसरा इस्लाम स्वीकार करने का साहस न कर सके।
काफिरों की यातनाओं से बचने के लिए पैगंबर इस्लाम के आदेश से कुछ ताज़ा मुसलमान होने वाले हबशा अर्थात वर्तमान इथोपिया पलायन कर गए। जो मुसलमान हबशा पलायन कर गए उनमें हजरत अली अलैहिस्सलाम के बड़े भाई जनाब जाफर तैयार भी थे। जब उन्होंने हबशा के ईसाई विद्वानों के साथ पवित्र कुरान के सूरह मरियम की आरंभिक आयतों की तलावत की तो सब रोने लगे और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे।
दोस्तों, दोस्तों, पवित्र कुरान की तिलावत की एक विशेषता यह है कि वो हर इंसान पर असर करती है, सुनने वाला गैर मुसलमान ही क्यों ना हो। अगर ये कहा जाए कि पवित्र कुरान की तिलावत इंसान पर जादू का काम करती है तो अतिशोक्ति नहीं होगी। पवित्र कुरान की तिलावत मन को हर लेती है, मुरझाए दिलों में प्राण फूंक देती है। पवित्र कुरान की तिलावत इंसान के दिल की आंखों को खोल देती है और इंसान का रोम रोम ईश्वरीय वाणी को सुनने लगता है। जब पवित्र कुरान की कुछ आयतों की तिलावत जनाबे जाफर तैयार ने किया तो उसके जो प्रभाव होते हैं उसी प्रभाव ने वहां के ईसाई विद्वानों और आम लोगों को रोने पर बाध्य कर दिया, जबकि उनमें से कोई भी मुसलमान नहीं था।
पवित्र कुरान की जो शिक्षाएं हैं और उसकी तिलावत के जो प्रभाव हैं, जो कल थे वही आज भी हैं और प्रलय तक रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पवित्र कुरान की तिलावत की विशेषता पैगंबर इस्लाम के जमाने तक ही थी, नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है, बल्कि पवित्र कुरान पैगंबर इस्लाम का जीवंत चमत्कार है और प्रलय तक रहेगा, और पूरी दुनिया के समस्त इंसान और जिन्नात मिलकर भी इस जैसा कुरान नहीं ला सकते। इस जैसा कुरान लाना तो बहुत ही दूर की बात है, इस जैसा एक सूरा, यहां तक कि एक आयत भी नहीं ला सकते, और इस बात का ऐलान महानिश्वर ने खुद पवित्र कुरान में कर रखा है।
कितनी अजीब बात है कि कितनी भी अच्छी किताब क्यों ना हो, जब इंसान उसे कई बार पढ़ लेता है तो उसका दिल भर जाता है और उसे पढ़ने का मन नहीं करता। परंतु पवित्र कुरान को नाजिल हुए 1400 से अधिक वर्ष हो रहे हैं और उस वक्त से लेकर अब तक न जाने कितने करोड़ या अरब लोगों ने उसकी तिलावत की और कर रहे हैं, परंतु आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि पवित्र कुरान की तिलावत करने से दिल भर गया।
इतिहास की किताबों में आया है कि चौथे इमाम इमाल जैनुल आबिदीन अलैहि सलाम के काल में लोग पानी भरने के लिए उनके दरवाजे से होकर गुजरते थे और बारंबार ऐसा हुआ कि लोग पवित्र कुरान की तिलावत सुनने के लिए इमाम के दरवाजे पर रुक जाते थे। ये पवित्र कुरान की तिलावत का चमत्कारिक असर है जो लोगों को वशीभूत कर लेता है। रोचक बात यह है कि जब वे पवित्र कुरान की तिलावत सुनने लगते थे तो इस प्रकार भाव विभोर वलीन हो जाते थे कि इस बात को भूल ही जाते थे कि पानी भी वे अपने साथ लिए हुए हैं और उसे नीचे रखना भी भूल जाते थे।
दोस्तों, बहरहाल कुरैश के जो तीन बड़े काफिर थे और एक दूसरे से वचनबद्ध हुए थे कि अब दोबारा चुपके से कुरान की तिलावत नहीं सुनेंगे, परंतु पवित्र कुरान की मनोहर तिलावत की वजह से उन सब ने इस बात को कोई महत्व नहीं दिया कि उन्होंने एक दूसरे से क्या वचन दिया है। उन तीनों काफिरों में से एक वलीद था जो काफी पूंजीपति था और समाज में उसकी एक हैसियत थी। वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से बहुत दुश्मनी रखता था। इसके बावजूद वे एक दिन कहता है कि ईश्वर की सौगंध, मैंने मोहम्मद से जो बात सुनी है उसे न किसी इंसान से सुना है और न ही किसी जिन्नात से। खुदा की कसम, इस बात में एक विशेष प्रकार की मिठास है। ये बातें उस वृक्ष की भांति हैं जिसके ऊपर फल हैं और नीचे जड़ है और कोई भी चीज़ उसके ऊपर नहीं है।
दूसरा काफिर वही पास में ही एक बड़ी मूर्ति की आड़ में छिपा था और धीरे से वह अपने दोस्त से कहता है कि मेरी उम्र के 50 साल बीत गए। मैं गवाही देता हूं कि इस आदमी यानी पैगंबर इस्लाम की अच्छी मीठी और आकर्षक बातों ने मुझे वशीभूत कर लिया है। वह वास्तव में एक जादूगर है। उसकी इस बात पर उसके दूसरे साथी ने कहा, जब तुमने इस प्रकार की बात कही तो मैं भी तुम्हारे लिए एक वास्तविकता बयान करता हूं। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार एक अनदेखी शक्ति व ताकत मुझे इस आदमी की ओर खींच कर ले आई। कुरान की तिलावत और उसकी सुंदर आवाज ने मेरी उत्सुकता में वृद्धि कर दी है और हम न चाहते हुए भी उसकी ओर खींचे आ रहे हैं। उसकी जो सुंदर बातें हैं वह न केवल हमें बल्कि उन समस्त लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित किए हुए है जो उसे घेरे हुए है। हमारी जो शायराना संगोष्ठियां होती थी अब वे निरस हो गई हैं। कुरान पर वर्चस्व जमाने के बारे में हमें कुछ सोचना होगा।
इसके बाद उन काफिरों ने भ्रष्टाचार के केंद्रों को बढ़ाने का फैसला किया और अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मनगढ़ंत और झूठी कहानियां बयान करना आरंभ कर दिया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊंची आवाज में पवित्र कुरान की तिलावत करते थे तो काफिर भी अपने शेरों आदि को ऊंची आवाज में पढ़ते थे ताकि पैगंबर इस्लाम की आवाज दूसरे लोगों के कानों तक न पहुंच सके। इस आधार पर जब भी पैगंबर इस्लाम पवित्र कुरान की तिलावत करते थे तो काफिर तालियां और सीटी बजाते और शोर शराबा करते थे। ये वो अवसर था जब महान ईश्वर ने पवित्र कुरान के सूरे फुस्सिलत की 26 से 28 तक की आयतें नाजिल की।
इन आयतों में महानेश्वर कहता है काफिर ये कहते थे कि इस कुरान को मत सुनो और जब ये कुरान पढ़ा जाए तो उस वक्त शोर मचाओ ताकि शायद तुम गालिब आ जाओ। निसंदेह हम काफिरों को दर्दनाक दंड का मजा चखाएंगे और जो बुरे कार्य वे कर रहे हैं उसके बदले में हम उन्हें कड़ा दंड देंगे। यह अल्लाह के दुश्मनों का दंड है, वे जो हमारी आयतों को झुठलाते थे और उसके बदले में हमेशा हमेशा नरक में रहेंगे।
पवित्र कुरान के एक व्याख्याकर्ता आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी इस आयत की व्याख्या में लिखते हैं कि हक को दबाने या एक बहुत पुराना तरीका है कि हक की बात को ही लोगों के कानों तक ना पहुँचने दो और आज भी इस शैली पर बड़े पैमाने पर अमल हो रहा है। अतः दुश्मन पवित्र कुरान के संदेशों को लोगों तक पहुंचने से रोकने के लिए विभिन्न चालें चल रहे हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की अश्लील फिल्में व तस्वीरें प्रसारित करते रहते हैं। कुछ साइटें ऐसी हैं कि जब भी आप उन्हें खोलें तो सबसे पहले कुछ अश्लील तस्वीरें खुलकर सामने आती हैं और वे हटाने पर भी नहीं हटती। बहुत से लोगों को यही कुछ तस्वीरें गुमराह कर रही हैं और वे हक के बारे में सोचते भी नहीं।
रोचक बात यह है कि मक्का के काफिरों ने पवित्र कुरान की आवाज को दबाने के लिए किसी प्रकार के प्रयास में संकोच से काम नहीं लिया, फिर भी कुरान की आवाज और उसकी शिक्षाएं लोगों तक पहुंची। आज के काफिरों और इस्लाम के दुश्मन पवित्र कुरान की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं, परंतु उन्हीं देशों में अधिक लोग इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं जहां इस्लाम विरोधी गतिविधियां अधिक अंजाम दी जा रही हैं।
दूसरे शब्दों में पश्चिम व यूरोपीय देश इस्लाम की छवि को बिगाड़ कर पेश करने में किसी प्रकार के प्रयास में संकोच से काम नहीं ले रहे हैं। आज जो भी देश इस्लाम की छवि को बिगाड़ कर पेश करने में लगे हुए हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वे तर्कसंगत और वास्तविकता पर आधारित पवित्र कुरान की शिक्षाओं और वहां इस्लाम के फैल जाने से भयभीत हैं और इसी चीज़ को रोकने के लिए वे ऐसा कर रहे हैं, परंतु उन्हें शायद ये पता नहीं है कि ईश्वरीय वादे के अनुसार एक समय वो आएगा जब पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा और हर तरफ सत और न्याय का बोलबाला होगा। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब समय हो चुका है कार्यक्रम यूरोप में इस्लामोफोबिया का।
यूरोप में इस्लामोफोबिया।
दोस्तों, यूरोप में इस्लामोफोबिया कार्यक्रम श्रृंखला लेकर उपस्थित हैं स्वाति और सैयद में साम का सलाम स्वीकार कीजिए।
इस्लामोफोबिया की शुरुआत यूरोप में 20वीं शताब्दी में हुई। ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद इसमें तेजी आ गई। पश्चिम के राजनीतिक गलियारों के हिसाब से ईरान की इस्लामी क्रांति यूरोप के लिबरल या उदारवादी नियमों के विपरीत थी। ऐसे में स्पष्ट सी बात है कि यूरोप में उसका मुकाबला किया जाना चाहिए था। अभी ये सब चल ही रहा था कि 11 सितंबर की घटना ने इस्लाम विरोधी गुटों को मुसलमानों और इस्लाम के विरुद्ध अपने षड्यंत्रों को लागू करने का उपयुक्त अवसर उपलब्ध करवा दिया। इस संदिग्ध घटना के बाद से उन्होंने सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया।
यही कारण है कि 11 सितंबर की संदिग्ध घटना के बाद मुसलमानों के विरुद्ध एक नया मोर्चा खोला गया, जिसके कारण यूरोप में रहने वाले मुसलमानों के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में कठिनाइयां आने लगी। इस्लाम विरोधी इस कार्रवाई को 6 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला भाग ईरान में इस्लामी क्रांति के आरंभ से शुरू होकर सोवियत संघ के विघटन तक का है। दूसरा हिस्सा 11 सितंबर 2001 के संदिग्ध आतंकी घटना के बाद की परिस्थितियों का है। तीसरा हिस्सा अमेरिका द्वारा इराक का अधिग्रहण किए जाने के साथ शुरू होता है और चौथा हिस्सा दुनिया में दाइश के उदय से आरंभ होता है और पांचवा हिस्सा यूरोप में अतिवादी दक्षिणपंथी गुटों का उदय और छठा अफगानिस्तान में तालिबान की पुनः वापसी से संबंधित बताया जाता है।
जैसा कि आपको बताया कि इस्लामोफोबिया 20वीं शताब्दी में यूरोप में शुरू हुआ और कई चरणों को तय करता हुआ आज पूरी दुनिया में बुरी तरह फैल चुका है। यहां पर हम इसके पहले चरण पर चर्चा करते हैं। ईरान में स्वर्गीय इमाम खुमैनी के नेतृत्व में सन 1979 में इस्लामी क्रांति सफल हुई। इसकी सफलता के कुछ वर्षों के बाद पूर्व सोवियत संघ का विघटन हो गया, जो हमेशा के लिए समाप्त हुआ। इस दौरान विश्व में मीडिया और राजनेताओं के माध्यम से ऐसा प्रचार किया गया जिसमें पश्चिम को इस्लामी विचारधारा का डर दिखाया जाने लगा। उस दौरान संचार माध्यमों ने इस्लाम को एक हिंसक एवं अतिवादी धर्म दिखाने के भरसक प्रयास किए और इस्लामी शिक्षाओं को अमानवीय एवं बुद्धि से परे की शिक्षाएं दिखाया जाने लगा।
इस प्रकार से वे ईरान की इस्लामी क्रांति के फैलाव को रोकना चाहते थे। इस्लाम और मुसलमानों के बारे में भ्रांतियां फैलाई गई और खुलकर दुष्प्रचार किए गए। जैसे जैसे मुसलमानों में जागरूकता बढ़ती गई, यूरोप में इस्लामी विरोधी नीतियों पर अधिक गंभीरता से काम किया जाने लगा। उस समय से इस्लाम विरोधी गुटों ने संस्थागत और सुनियोजित ढंग से इस्लाम के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों पर हमले करने शुरू कर दिए। बाद के समय में जब ब्रिटेन के भ्रष्ट लेखक सलमान रुश्दी ने इस्लाम के बारे में आपत्तिजनक पुस्तक लिखी, तो इससे इस्लाम विरोधी तत्वों को काफी बल मिला। विभिन्न पत्रिकाओं में मुसलमानों के बीच अति सम्मानीय शख्सियतों के कार्टूनों का प्रकाशन और उनका विभिन्न शासन व्यवस्थाओं की ओर से समर्थन किया जाने लगा।
पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरी दुनिया से कम्युनिज्म के खतरे की समाप्ति के इस्लाम और मुसलमानों को यूरोप के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में दर्शाने के प्रयास तेज कर दिए गए। इस हिसाब से वहां पर इस्लामोफोबिया को तेजी से हवा दी जाने लगी। अभी ये सब चल ही रहा था कि अमरीका में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घटने वाली संदिग्ध घटना घटी। पश्चिमी संचार माध्यमों में 9/11 की घटना को इस्लामी मूल्यों और उदारवादी मूल्यों के बीच टकराव के रूप में पेश किया जाने लगा।
11 सितंबर की घटना के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ईरान के एक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रजा देहशीरी कहते हैं कि यह घटना ऐसी है जिसको नए शीत युद्ध का नाम भी दिया जा सकता है, जिसने इस्लामोफोबिया को न केवल यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बढ़ावा दिया। इराक के विरुद्ध हमला करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मुसलमानों के विरुद्ध सलीबी युद्ध या क्रेसूट की बात कही थी, इसीलिए उसने आतंकवाद विरोधी अभियान को इस्लामी विरोधी रंग दिया गया। 11 सितंबर की घटना के दो दिनों के बाद हेराल्ड ट्रिब्यून समाचार पत्र में जॉन विकर ने इसको इस्लाम और पश्चिम के बीच टकराव बताया था।
इस घटना के बाद पूरे पश्चिम में मुसलमानों के विरुद्ध शाब्दिक युद्ध आरंभ हो गया, जो बहुत से स्थानों पर उनके विरुद्ध झड़पों और मारपीट में बदल गया। इस हिसाब से 11 सितंबर की घटना से इस्लामोफोबिया का दूसरा चरण आरंभ हुआ। इराक पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करने में अमेरिका की विफलता के बाद इस्लामोफोबिया का तीसरा चरण आरंभ हुआ। ये चरण 2005 में पवित्र पैगंबर इस्लाम के अपमानजनक कार्टून बनाए जाने से शुरू हुआ। इसे डेनमार्क के संचार माध्यमों ने प्रकाशित करके इस्लाम विरोधी युद्ध की ज्वाला भड़काई थी।
हॉलैंड के अतिवादी सांसद ग्रीट वाइल्डर्स द्वारा विवादित फिल्म फितना का निर्माण और यूरोप के कुछ धर्म गुरुओं, नेताओं तथा जानकारों के बयानों ने यूरोप में इस्लामोफोबिया को बढ़ाने और उसको फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह दो चरण पिछले चरणों की तुलना में अधिक जटिल और आक्रामक थे। इनके माध्यम से मुसलमानों और इस्लाम को अधिक अपमानित करने के प्रयास किए गए। यूरोप में कुछ मस्जिदों में सूअर का गोश्त डालने की कोशिश की गई और वहां की कुछ मस्जिदों में जमात से नमाज पर ना रोक दी गई। इसी के साथ मुस्लिम महिलाओं को हिजाब करने से रोकने की कोशिश भी की जाती रही है। इस हिसाब से वहां पर इस्लाम के प्रतीकों को निशाना बनाया जाने लगा।
दाइश जैसे तकफीरी आतंकवादी गुटों के सीरिया और इराक में सामने आने के साथ ही दुनिया में इस्लामोफोबिया की चौथी लहर शुरू हुई। पश्चिमी सुरक्षा एजेंसियों के एजेंट इन गुटों ने इस्लाम को हिंसक एवं कट्टर धर्म दिखाने के लिए रक्तपात का सहारा लिया। पश्चिम से ली गई सैन्य और मीडिया संबंधी ट्रेनिंग के साथ दाइश ने बहुत ही बुरे तरीके से लोगों की हत्याएं की और फिर उनके वीडियो बनाकर उन्हें जारी किया। अपने इन कामों से आतंकवादी गुट दाइश ने पश्चिम की उस मनोकामना को पूरा करने का प्रयास किया कि इस्लाम पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा है।
अन्य आतंकी गुटों के मुकाबले ने दाइश ने बहुत ही चतुराई और दक्षता से सोशल मीडिया का प्रयोग किया, जो इसके प्रशिक्षणकर्ताओं ने उसे सिखाया था। विशेषज्ञों का कहना है कि हिंसा के बारे में संचार माध्यमों की कार्यशैली स्वयं हिंसा से कहीं अधिक महत्व रखती है। सीरिया और इराक में दाइश के उदय ने पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों को जितना बदनाम किया, उसकी भरपाई फिलहाल बहुत मुश्किल है। यूरोप में अतिवाद और धूर दक्षिणपंथी गुटों की मजबूती इस्लामोफोबिया की पांचवी लहर के रूप में है। अतिवादी दक्षिणी पंथ ने यूरोपीय देशों की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति और आर्थिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। वर्तमान समय में यूरोप में मौजूद अतिवाद और दक्षिणपंथ की जड़ें नाजीवाद और फासीवाद में निहित है। यह वे विचारधाराएं हैं जो दूसरे विश्वयुद्ध का कारण बनी थी। हालांकि बाद में उनको प्रतिबंधित कर दिया गया, किंतु वे आज भी मौजूद हैं और कहीं कहीं पर उन पर सरकारों की दया दृष्टि भी है।
अमेरिका में घटने वाली 9/11 की घटना के बाद इस विचारधारा को फिर से उभारा जा रहा है। इस बारे में डॉक्टर मोहम्मद रजा दहशीरी कहते हैं कि पश्चिम में पाया जाने वाला दक्षिणपंथ राष्ट्रवादी कल्याणकारी राष्ट्रप्रेम अप्रवासियों विशेषकर मुस्लिम अप्रवासियों के विरोध और जातिवाद के समर्थन से फल फूल रहा है। बहुसंस्कृतिवाद की विचारधारा की विफलता तथा मुसलमानों द्वारा पश्चिमी संस्कृति को न अपनाने के कारण पश्चिम के अति दक्षिणपंथी दल अब यूरोप में मुसलमान पलायनकर्ताओं के प्रवेश का खुलकर विरोध करने लगे हैं। वे अब इन पलायनकर्ताओं को अपने यहाँ न आने देने के लिए सरकारों पर दबाव बना रहे हैं।
सितंबर 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने के साथ ही इस्लामोफोबिया की छठी लहर सामने आई। तालिबान ने इस्लाम को समझने में जो गलती की, उसके कारण पूरी दुनिया में उसकी छवि बहुत ही खराब हो गई। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में लड़कियों की पढ़ाई पर पाबंदी, उनके स्कूलों को बंद करना, गैर धार्मिक स्कूलों पर प्रतिबंध, स्वतंत्र चुनाव का विरोध और इसी प्रकार की तालिबान की हरकतों ने पश्चिमी संचार माध्यमों को इस्लाम के विरुद्ध जहर उगलने का बहुत अच्छा अवसर प्रदान कर दिया।
अमेरिका में घटने वाली 11 सितंबर की घटना में हालांकि सीधे रूप से तालिबान की कोई भूमिका सिद्ध नहीं हो सकी, लेकिन इस घटना के आरंभ से ही अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों और वहां की मीडिया ने इसका दोषी तालिबान को दर्शाने का प्रयास किया। यूरोप में इस्लामोफोबिया की गहन समीक्षा बताती है कि ये एक सामाजिक गुत्थी है। इसे फैलाने में वहां के संचार माध्यमों, सरकारों, एजेंसियों और राजनीतिक दलों की भूमिका प्रमुख रूप से है। ऐसे में इस्लामी देशों, मुसलमानों, मुस्लिम संगठनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे बहुत ही गंभीरता के साथ तार्किक ढंग से इसका मुकाबला करें। दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ, हमें इजाजत दीजिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे यूरोप में इस्लामोफोबिया, जिसे लेकर उपस्थित थे हमारे साथी सैयद मिसम और स्वाति। हमारे इस कार्यक्रम को आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। दोस्तों, अब समय हो चुका है आज के मुख्य समाचारों के सारांश का। ईरान ने तस्करी करने वाले एक और तेल टैंकर को पकड़ लिया है, जिसकी वजह से अमरीका नाराज हो गया। अमरीकी एजेंसी का कहना है कि ईरान परमाणु हथियारों के प्रयास नहीं कर रहा है। इसराइली सैनिक फिलिस्तीनी मीडिया कर्मियों को लगातार निशाना बना रहे हैं और अंतरिक्ष दुनिया में भारत इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। व्हाट्सएप पर संपर्क के लिए हमारा नंबर है 0098-9035-065-492। इसी के साथ अख्तर अब्बास और साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।